ऑल नेशंस गोस्पेल पब्लिशर्स द्वारा दो सड़कें। सड़क का चयन। जब हम किसी ऐसी जगह की यात्रा शुरू करते हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए थे, तो हम पूछते हैं कि हमें कौन सी सड़क लेनी चाहिए। हम खुली आंखों से यात्रा करते हैं और अगर हम देखते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं, तो हम मुड़ जाते हैं और सही रास्ते की तलाश करते हैं। हर दिन आप और मैं इस दुनिया से अनंत काल की ओर यात्रा कर रहे हैं, एक ऐसी नियति की ओर जो कभी खत्म नहीं होगी और जिसे एक बार वहां पहुंचने पर बदला नहीं जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं? हमारी गाइड बुक। परमेश्वर ने अपने प्रेम और दया में हमें एक गाइड बुक बाइबल दी है, जो हमें स्पष्ट रूप से स्वर्ग का रास्ता दिखाती है। इस पुस्तिका के उद्धरण इस पुस्तक से लिए गए हैं। आपका वचन मेरा मार्गदर्शन करने के लिए एक दीपक है और मेरे पथ के लिए एक प्रकाश है। भजन 119 पद 105। चौड़ी सड़क। इस सड़क पर कई लोग हैं। नरक का द्वार चौड़ा है और उस तक जाने वाला मार्ग आसान है, और बहुत से लोग हैं जो इसे पार करते हैं। मत्ती 7 पद 13। उनमें से ज्यादातर की आंखें बंद हैं। वे नहीं जानते या वे परवाह नहीं करते कि वे विनाश के मार्ग पर हैं। आपको क्या लगता है कि सही सड़क मौत का कारण बन सकती है? नीतिवचन 14 पद 12। उनके दिमाग को इस दुनिया के दुष्ट देवता शैतान द्वारा अंधेरे में रखा गया है। 2 कुरिन्थियों 4 पद 4। भार। इस मार्ग के लोग पाप के बोझ तले दबे हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की बचाने वाली उपस्थिति से बहुत दूर है। रोमियों 3 पद 23। हम भगवान से एक भी पाप नहीं छिपा सकते। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। 1 शमूएल 16 पद 7। भार उनकी पीठ पर जंजीर से बंधा हुआ है। आप और मैं हमारे अपने प्रयासों से एक भी पाप से मुक्त नहीं हो सकते। समय बीतने के साथ साथ भार और भी भारी होता जाता है और पाप अपनी मजदूरी चुकाता है, मृत्यु। रोमियों 6 पद 23। बिजली की चमक। तस्वीर में बिजली परमेश्वर के न्याय का प्रतिनिधित्व करती है। हर एक को एक बार मरना चाहिए और उसके बाद परमेश्वर द्वारा न्याय किया जाना चाहिए। इब्रानियों 9 पद 27। तब मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर बैठने वाले को देखा, और मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। किताबें खोली गई और फिर एक और किताब खोली गई, जीने की किताब। मरे हुओं का न्याय उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार किया गया, जैसा कि किताबों में दर्ज है। जिस किसी का नाम जीवित की पुस्तक में नहीं लिखा था, उसे आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20 पद 11 से 12 और 15। आग चूंकि भगवान शुद्ध और न्यायी हैं, पाप के लिए दंड अवश्य होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक नरक है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वालों के लिए अनंत दंड का स्थान है। बाइबल कहती है वे नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि उनका ईश्वर उनकी शारीरिक इच्छाएं हैं और वे केवल इस दुनिया की चीजों के बारे में सोचते हैं। फिलिप्पियों 3 पद 19। परंतु परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर भी है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु चाहता है कि सब अपने पापों से फिरें। 2 पत्रस 3 पद 9। अपनी महान दया और प्रेम में उसने उन सभी के लिए बचने का रास्ता बना लिया है जो वास्तव में इसे चाहते हैं। क्या आप जीवन का मार्ग खोजना चाहते हैं? जीवन का मार्ग, उद्धारकर्ता। चूंकि हम अपने आप को हमारे पापों से मुक्त नहीं कर सके, न ही हमारे पापों के न्यायपूर्ण दंड से, परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता प्रदान किया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह न मरे परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 पद 16। परमेश्वर स्वर्गीय पिता ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से इस संसार में भेजा, वह एक आदमी के रूप में रहता था, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया। वह भलाई करता रहा, बीमारों को चंगा करना, कोढ़ियों को चंगा करना, दुष्टात्माओं को निकालना, उनके पापों के लिए खेद करने वालों को क्षमा करना और लोगों को परमेश्वर के बारे में शिक्षा देना। लेकिन मनुष्य बनने में उसका महान उद्देश्य हम सभी के लिए बलिदान के रूप में मरना था, हमारे पापों के लिए दंड का भुगतान करने के लिए अपने दिव्य पाप रहित जीवन और उनके बहुमूल्य रक्त को देने के लिए। उसने दुष्टों को उसे ले जाने दिया, उसे तब तक कोड़े मारे जब तक कि उसकी पीठ खूनी घावों से ढक न जाए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया और अंत में उसे अपने हाथों और पैरों से सूली पर चढ़ा दिया, जहां वह दर्द और पीड़ा में लटका हुआ था। मसीह ने आप ही हमारे पापों को अपनी देह में उठाकर क्रूस पर चढ़ा दिया, 1 पत्रस 2:24। वह तुम्हारे लिए और मेरे लिए मरा। उसका पुनरुत्थान। कब्र में 3 दिनों के बाद ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे। वह चलकर अपने चेलों से बातें करता रहा और 40 दिन के बाद स्वर्ग पर चढ़ गया, जहां वह परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। रोमियों 8:34, एक जीवित उद्धारकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे अधिकार के साथ। मत्ती 28:18, और इसलिए वह अभी और हमेशा उन लोगों को बचाने में सक्षम है जो उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वह हमेशा के लिए भगवान से उनके लिए याचना करने के लिए जीवित है। इब्रानियों 7:25। स्वर्ग। स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर अपनी सारी महिमा में रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तब लौटकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे, यूहन्ना 14:2-3। यह एक अद्भुत जगह है जहां वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। पुरानी चीजें गायब हो गई हैं। फिर रात न होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनका प्रकाश होगा। प्रकाशित वाक्य 21:4-22:5। यह एक पवित्र स्थान है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नगर में प्रवेश न करेगी और न कोई लज्जाजनक काम करेगा और न झूठ बोलेगा। केवल वे ही नगर में प्रवेश करेंगे जिनके नाम मेमने के जीवित रहने की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:27। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जाता। यूहन्ना 14:6। उद्धार केवल उसी के द्वारा पाया जाना है। सारे जगत में और कोई नहीं जिसे परमेश्वर ने दिया है जो हमें बचा सके। प्रेरितों के काम 4:12। स्वर्ग की राह कैसे शुरू करें? अपने पापों से फिरो और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, जैसे तुम अपने पाप के बोझ के साथ हो, और उससे तुम्हें क्षमा करने के लिए कहो। वह कहता है, जो कोई मेरे पास आता है, उसे मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। यूहन्ना 6:37। हे सब भारी बोझ ढोने के थके हुओं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। पाप से अपने छुटकारे के लिए केवल मसीह में विश्वास करें। यीशु का लहू, उसका पुत्र, हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7। वह तुम्हें एक नया जीवन, अनंत जीवन देगा। मसीह ने कहा, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, अनंत जीवन उसका है। उसका न्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन वह पहले ही मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। जब कोई मसीह से जुड़ता है तो वह नया होता है, पुराना चला गया, नया आ गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। आपके मन में शांति रहेगी। अब जबकि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ ठीक हो गए हैं, तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। रोमियो 5:1 साक्ष्य यह है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और इस जीवन का स्रोत उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास यह जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। मैं तुम्हें यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, तुम जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो। 1 यूहन्ना 5:11-13। नया जीवन कैसे जिए? हर दिन बाइबल पढ़ें। हमारे रास्ते के लिए प्रकाश होने के अलावा यह आत्मा के लिए भोजन है। नवजात बच्चों की तरह बनो, हमेशा शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए प्यासे रहो, ताकि इसे पीकर तुम बड़े हो जाओ। 1 पत्रस 2:2। जैसा कि आप पढ़ते हैं, परमेश्वर से उसकी पवित्र आत्मा द्वारा आपका मार्गदर्शन और शिक्षा देने के लिए कहें। हर दिन प्रार्थना में भगवान के पास आओ। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हुए किसी भी चीज की चिंता मत करो, लेकिन अपनी सभी प्रार्थनाओं में भगवान से जो चाहिए वो मांगो। हमेशा एक आभारी दिल से उससे पूछो। और परमेश्वर की शांति, जो मनुष्य की समझ से बहुत परे है, तुम्हारे हृदय और मन को मसीह यीशु में एकता में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:6-7। दूसरों से मसीह के बारे में बात करें। अपने परिवार के पास वापस जाओ और उन्हें बताओ कि यहोवा ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और वह तुम पर कितना दयालु है। मरकुस 5:19। प्रलोभन में प्रभु को पुकारो। वह उनकी सहायता कर सकता है जो परीक्षा में पड़ते हैं, क्योंकि वह स्वयं परीक्षा में पड़ा और पीड़ित हुआ। इब्रानियों 2:18। यदि आप फिर से पाप करते हैं तो इसे जल्दी से भगवान के सामने स्वीकार करें। परंतु यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लें, तो वह अपक्की प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और जो ठीक है वह करेगा। वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। 1 यूहन्ना 1:9। प्रभु यीशु मसीह में अन्य विश्वासियों के साथ संगति करने का प्रयास करें। मेरी आज्ञा यह है, जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ वैसा ही एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 15:12। हमेशा भगवान का पालन करें। जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी शिक्षा को मानेगा। यूहन्ना 14:23। डरो मत, क्योंकि मसीह तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इब्रानियों 13:5। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को दे दो। उसे अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार निर्देशित करने दें। इस तरह आपको सच्चा सुख मिलेगा।